आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 7। इस कविता का शीर्षक था छाया मत छूना और लेखक थे गिरिजा कुमार माथुर। तो माथुर जी की जो ये कविता है छाया मत छूना, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कवि ने बताया हमें अपने भूतकाल से छुटकारा पा लेना चाहिए, है ना। यानी अतीत को हमेशा याद नहीं करते रहना चाहिए, अतीत को पकड़ कर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधारना चाहिए। वर्तमान की जो स्थितियां हैं उनको स्वीकार करके उसके हिसाब से जीना चाहिए ताकि हम लोग अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। अगर अतीत से आगे बढ़ के वर्तमान को सुधारेंगे तभी हमारा भविष्य अच्छा हो पाएगा, अन्यथा हमें दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो जीवन में इस दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें छाया यानी जो भ्रम है, अतीत का भ्रम, यादों का भ्रम, उससे मुक्ति पानी चाहिए, है ना। तो कविता तो हमने पढ़ ली थी, अब हम आज क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर। तो आप लोग पेज नंबर 47 पर आ जाइए, ठीक है। पेज नंबर 47 पे यहाँ प्रश्नोत्तर देखेंगे। अब पहला प्रश्न पढ़ती हूँ, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो आप इसमें क्या बताएंगे, यथार्थ मतलब क्या होता है, वास्तविकता, है ना, जो अभी हमारे आसपास हो रहा है, वर्तमान में जो भी घटित हो रहा है। तो आप लिखेंगे कवि गिरिजा कुमार माथुर ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसीलिए कही है क्योंकि वे मानते हैं वर्तमान में हमारी स्थितियां चाहे जैसे भी हो, सत्य वही होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हमारी जो भूली हुई यादें हैं उन्हें अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारा जीवन जो है वो दुखी हो जाएगा, है ना। हम बड़े बड़े सपने देखने लगेंगे, उन यादों को याद करने लगेंगे तो इससे हमारा जीवन दुखी हो जाएगा। और अगर हमारे जीवन में अभी वर्तमान में कोई कठिनाई या दुख है तो हमें उसका सामना करना चाहिए। अगर हम उसका सामना नहीं करेंगे, उसे अनदेखा करेंगे तो हमें हमारी मंजिल प्राप्त नहीं होगी, हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। इसलिए हमारे जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए बल्कि सकारात्मक भाव रखते हुए उसका सामना करना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं, दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो हमें कठोर जीवन को, कठोर यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न 2, भाव स्पष्ट कीजिए। ये कुछ पंक्तियां आपको दी गई हैं, आपको इनका भाव स्पष्ट करना है, क्या है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इन पंक्तियों का आपको भाव बताना है। तो आप क्या करेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपनी यश, प्रभुता या बड़प्पन के कारण भ्रम में उलझा रहता है और उसका मन स्थिर नहीं हो पाता। क्या होता है ना, जैसे जो मृग होता है ना, वो रेत में पानी समझ के यहाँ वहां दौड़ता रहता है, वैसे ही मनुष्य भी जीवन भर भटकता रहता है लेकिन उसकी जो कामनाएं हैं वो कभी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। तो मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, यानी कि हर चांदनी रात में के बाद काली रात भी आती है। रात कृष्णा यानी काली रात भी आती है, यानी सुख के बाद दुख भी आएगा, यह हमें समझ लेना चाहिए, है ना। ये हमें समझ लेना चाहिए कि सुख के बाद दुख आएगा, इसीलिए हमें सुख हो चाहे दुख दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सत्य को जानकर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जीवन में दोनों भावों का होना, है ना, सुख का भी और दुख का भी, दोनों भावों का होना जरूरी है, तभी हमारा मार्गदर्शन हो सकता है और हम मृग तृष्णा में या किसी भी भ्रम जाल में नहीं फंसेंगे, है ना, अगर हम दोनों चीजों को स्वीकार करेंगे हमें पता होगा कि हाँ यही सत्य है कि आज सुख है तो कल दुख भी आएगा और अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यही जीवन का सत्य अगर हम समझ लेंगे तो हम कभी भी भ्रम जाल में नहीं फंसेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 देखिए। छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? क्योंकि कविता का शीर्षक ही है ना छाया मत छूना। तो यहाँ छाया शब्द जो है वो जीवन की बीती हुई यादों से यानी अतीत से संबंधित है। आप लिखेंगे छाया शब्द जीवन की बीती हुई यादों यानी अतीत से संबंधित है। कवि के अनुसार हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि आज सुख है तो फिर दुख नहीं आएगा या आज दुख है तो फिर सुख नहीं आएगा। दोनों ही आते हैं और दोनों की ही कुछ मीठी कुछ कड़वी यादें हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन अगर हम अपने वर्तमान समय को पुराने समय से या फिर पुरानी यादों से जोड़े रखेंगे तो हमारा जीवन कष्टपूर्ण हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो हमारी मधुर स्मृतियां हैं यानी मीठी यादें हैं वो हमें कमजोर बना देंगी, हमारे दुख को और भी बढ़ा देंगी। इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम उन यादों को भूल जाएं और वर्तमान की जो भी सच्चाई है चाहे वो कितनी भी कठिन हो या कितनी भी दुष्कर हो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और खुद को भूतकाल से या अतीत से अलग रखना चाहिए, वरना हमारे जीवन में दुख और भी बढ़ जाएगा। प्रश्न 4 देखिए। कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छाट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। तो आप क्या लिखेंगे? दुख दूना पहला लिखेंगे। कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, पॉइंट्स में आप चाहें तो कहीं नोट कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए। पहला लिखिए दुख दूना। तो यहाँ पे जो दूना शब्द है वो है विशेषण और इससे शब्द में क्या विशेषता आई है हमें लिखना है ना, कि शब्दों की विशिष्टता बतानी है हमें कि विशेषण के प्रयोग से उस शब्द के प्रयोग में क्या विशिष्टता पैदा हुई है, हमें यही तो बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ दुख दूना में दूना विशेषण है और इसके प्रयोग से दुख की अधिकता बताई जा रही है, यानी दुख कितना अधिक बढ़ जाएगा ये बताया जा रहा है। अगला लिखेंगे जीवित क्षण। ठीक है, तो क्षण क्या होते हैं? पल। और जीवित हो जाएगा यहाँ विशेषण। तो इसके जीवित को यहाँ प्रयोग करने से यह विशिष्टता आई है कि जो क्षण है उसका जीवंत होना हमें महसूस होता है, कि क्षण जो है वो जीवित चीज है, वो चलती रहेगी, रुकने वाली या स्थिर चीज नहीं है। अगला लिखिए सुरंग सुधियां। ठीक है, तो सुरंग जो है वो यहाँ विशेषण है और सुधियां यानी जो हमारी यादें जो हमारी स्मृतियां हैं। तो यहाँ पे सुरंग शब्द के प्रयोग से यह पता चलता है कि जो हमारी यादें हैं वो कितनी रंग बिरंगी हो सकती हैं, यानी कितनी अच्छी हो सकती हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो आया है वो देखिए विशेषण के साथ, एक रात कृष्णा। ठीक है, यहाँ विशेषण हो जाएगा कृष्णा। तो कृष्णा विशेषण के प्रयोग से रात कृष्णा में विशिष्टता पैदा हुई है, क्योंकि इससे रात की कालिमा यानी जो अंधकार है उसे दर्शाया गया है, बताया गया है कि इससे अंधकार कितना बढ़ गया है। ठीक है, अंधकार कितना बढ़ गया है या रात कितनी काली हो गई है, ऐसा हमें अनुभव कराया गया है। आगे है शरद रात। तो यहाँ पे रात के आगे शरद लगा के विशेषण किया गया, शरद विशेषण है जो रात की रंगीनी या फिर मोहकता को बता रहा है। अगला शब्द आप लिखेंगे रस बसंत। तो बस के आगे रस बसंत के आगे बसंत के आगे रस शब्द लगाया जो कि विशेषण है। तो विशेषण यहाँ पे रस है और इसे हम बताएंगे कि बसंत को मधुर रसीला और मनमोहक बताया जा रहा है। बसंत को कैसा बताया जा रहा है? मधुर रसीला और मनमोहक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। मृग तृष्णा किसे कहते हैं और कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि जो मृग तृष्णा है वो क्या होता है ना, मैंने कविता पढ़ाते समय भी बताया था, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ वही चीज, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मृग तृष्णा क्या होता है। देखो, जब रेगिस्तान में बहुत तेज धूप पड़ रही होती है, गर्मी का मौसम होता है, तो जब धूप रेत पे पड़ती है ना, तो रेत चमकने लगती है, और दूर से उसे देखो तो लगता है कि वो जो रेत चमक रही है दूर, वो पानी है। और जो मृग होता है यानी जो हिरण होता है, उसे वो पानी लगता है और वो भागते हुए उसके पास जाता है ना, भागते हुए उसके पास जाता है, पर वहां जा पहुंचता है तो पानी उसे नहीं दिखता, फिर वो दूसरी ओर देखता है, वहां पे भी रेत चमक रही होती है, तो उसे लगता है वहां पानी है। ऐसे करते करते वो पूरे रेगिस्तान में भागता रहता है और भटकता रहता है, तो ये क्या हो जाता है, एक भ्रम जाल पैदा होता है ना, वो भ्रम में रहता है, वो भटकता रहता है कि पानी मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसे पानी कहीं भी नहीं मिलता। तो ये जो भ्रम जाल है जो मृग को होता है, जो हिरण को होता है, उसे कहते हैं मृग तृष्णा। और कविता में भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है कि जो मनुष्य है वो अपनी प्रभुता की खोज में, अपने बड़प्पन की खोज में भटकता रहता है ना, जैसे हिरण भटकता है पानी की खोज में, वैसे ही मनुष्य भी इस तृष्णा में, इस लालसा में भटकता रहता है और अपने जीवन को दुखी बना लेता है। ठीक है, समझ में आ गया मृग तृष्णा का अर्थ? तो यही आपको पहले मृग तृष्णा का अर्थ बताना है, फिर आपको लिखना है कि ये कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि मनुष्य भी हिरण की भांति भ्रम जाल में यहां से वहां भटकता रहता है और कभी भी संतुष्ट ना हो पाने के कारण हमेशा दुखी रहता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। ठीक है, ये जो पंक्तियां कही जाती हैं, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, यह भाव कविता में किन पंक्तियों में आपको दिखाई देता है? तो देखिए, वो पंक्तियां मैं आपको बताती हूँ जिनमें ये दिखता है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। क्या हुआ जो खिला फूल बसंत, रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे करतु भविष्य वरण। ठीक है, आइए एक बार कविता में देख लीजिए कहाँ पे है ये, पेज नंबर 46 पर आइए। पेज नंबर 46 पर जो कविता हमने पढ़ी उसमें आखिरी पैराग्राफ में देखिए, सेकेंड लास्ट लाइन्स देखिए, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे करतु भविष्य वरण। इन पंक्तियों में ही ये भाव मिलता है कि बीती ताही बिसार दे, यानी जो बीत गया उसे भूल जाए और आगे की सुध लें, आगे की तैयारी करें, आगे की यादों को जोड़ना शुरू करें। ठीक है, इन पंक्तियों को आप अभी बुक में ही टिक कर लीजिए ताकि आप भूले ना, आंसर 6 करके या उत्तर 6 करके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। दुख के क्या कारण है, कविता में क्या कारण बताए गए हैं, ये आपको बताना है। तो आप लिखेंगे कि गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना में जिन दुखों का वर्णन हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कवि ने बताया है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, है ना, जो कामनाएं हैं या जो लालसाएं हैं, वो कभी खत्म नहीं होती हैं, और मनुष्य इनके पीछे भागता रहता है, यही उसके दुख का कारण बनती हैं। मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो लालसाएं हैं, फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं और लालसाएं हैं, वो कभी पूर्ण नहीं होती हैं और यही मनुष्य के दुख का कारण बनती हैं। मनुष्य इनके पीछे भागता रहता है और कभी तृप्त नहीं होता, यानी कि कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसके हाथ में कुछ नहीं लग पाता, वो भ्रम जाल में भटकता रहता है और इसी वजह से उसका दुख बढ़ता रहता है। दूसरी चीज, हमारी जो बीती हुई स्मृतियां हैं, यानी जो अतीत की यादें हैं, हम उन्हें पकड़े रहते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा हम उनके सहारे नहीं जी सकते, हमें असल में वर्तमान में ही जीना है। तो जो हम पुरानी यादों को छोड़ नहीं पाते हैं, वही हमें दुख देती हैं, है ना? जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो हमारे दुख को बढ़ा देती हैं। दूसरा, दुविधाग्रस्त मन स्थिति और समय के हिसाब से अगर हम अपना व्यवहार ना करें, आचरण ना करें, तो भी हमारे जीवन में दुख आता है। और एक जो मृग तृष्णा वाली बात बताई थी कि व्यक्ति अपनी प्रभुता और बड़प्पन में उलझा रहता है ना, इसको ढूंढता रहता है, भटकता रहता है, इसीलिए भी वो दुख होता है। तो मुख्य कारण यही है कि उसकी कामनाएं और इच्छाएं पूरी नहीं होती और वो अतीत की यादों को छोड़ नहीं पाता, उससे बाहर नहीं निकल पाता, वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। इस कारण हर समय उसका जो दुख है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 8 देखिए। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियां सजो रखी हैं? तो ये जो पंक्ति है ना, जीवन में सुरंग सुधियां, यानी सबके जीवन में कुछ रंग बिरंगी यादें, कुछ मीठी यादें अवश्य होती हैं। आपके भी कुछ ना कुछ बचपन की या अभी की यादें होंगी जो जब आप याद करते होंगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती होगी ना, यानी आपको अच्छा लगने लगता होगा, तो वो आपके जीवन की मधुर यादें हो जाती हैं। तो सोच कर बताइए कि ऐसी कौन सी यादें हो सकती हैं आपको याद करना है, कि कभी आपके पापा मम्मी ने आपको कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट लाके दिया हो, है ना, कभी आप क्लास में फर्स्ट आए हो, या कभी आपने किसी की मदद की हो और फिर आपको उस मदद को करने के बाद बहुत ही खुशी की अनुभूति हुई हो। तो ऐसा अपना कोई भी अनुभव आप याद करिए जिसे आप अपने कह सकते हैं कि वो मेरी मीठी याद है, है ना, जब भी उस याद को याद करता हूँ तो करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। ऐसी कोई भी एक घटना, कोई भी प्रसंग जो आपकी मीठी याद के तौर पर दिमाग में छपी हुई है, उसे आपको एक अनुच्छेद के रूप में, यानी एक पैराग्राफ के रूप में इसके उत्तर में लिखना होगा। ठीक है, कौन सी याद आपने संभाल कर रखी है, संजो रखी है, नहीं संभाल कर रखी है, वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर आप स्वयं कर सकते हैं, घर जाके सोचिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखिए। ठीक है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है, क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। कवि तो इन पंक्तियों में ये कह रहे हैं कि भले ही कोई चीज हमें देर से मिली, लेकिन मिली तो सही, हम यही सोचकर खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके इनके विचार से सहमत है, या आपको लगता है कि नहीं, अगर समय पर कोई उपलब्धि नहीं मिली है तो वो उपलब्धि उपलब्धि नहीं है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। पहले आप अपनी कक्षा में जो बच्चे हैं उनको दो समूह में बांट लीजिए, है ना, आपस में एक वाद विवाद, एक चर्चा कीजिए। एक पक्ष ऐसा होगा जो कहेगा कि हाँ, चाहे समय बीत जाए लेकिन अगर उपलब्धि मिलेगी तो मनुष्य को आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। वहीं जो दूसरा समूह होगा वो विपक्ष में होगा, वो ये कहेगा कि नहीं, अगर समय बीत गया है और तब कोई उपलब्धि मिल रही है तो उस उपलब्धि से खुश होने की जरूरत नहीं है, वो आनंद नहीं दे सकती है। ठीक है, ऐसे आप अपने विचार व्यक्त कीजिए और फिर आपको जो चीज सही लगती है वो आप अपने विचार इसके उत्तर में लिखेंगे। अगर हाँ लिखेंगे तो लिखेंगे, हाँ कवि का मानना बिल्कुल सही है, समय बीत जाने पर भी यदि उपलब्धि मिलती है तो वो मनुष्य को आनंद देती ही है। जैसे कि आप उदाहरण दे सकते हैं कुछ भी, कि अगर कोई चीज की इच्छा में आज है लेकिन वो हमें 4 दिन बाद भी मिल रही है तो कहीं ना कहीं हमें खुशी होती ही है। वहीं अगर आप ना लिख रहे हैं तो आप इसका उल्टा करके लिखेंगे कि नहीं, हम कवि के विचार से सहमत नहीं हैं, अगर समय बीतने पर कोई उपलब्धि मिलेगी तो उससे मनुष्य को आनंद नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि कोई 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहता है, या फिर 12वीं की परीक्षा में, क्योंकि 12वीं आपके स्कूल की आखिरी क्लास होती है, अगर 12वीं कक्षा में कोई अच्छे नंबर लाना चाहता है लेकिन उसको उतने अच्छा नंबर नहीं मिल पाते हैं, और फिर आगे जाके उसको मन का कॉलेज नहीं मिलता, फिर उसे वहां जाके 1-2 साल मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर मिलते हैं, तो हो सकता है उसके दिमाग में हमेशा वो खटकता रहे कि 12वीं में जो नंबर चाहता था वो तो नहीं मिल पाए, अब मिले तो क्या फायदा, है ना, मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया जहां मैं जाना चाहता। तो ऐसे आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, कोई और उदाहरण भी दे सकते हैं अपने विचारों को पूरी तरह समझाने के लिए, या तो आप हाँ में उत्तर लिखेंगे या ना में लिखेंगे, जो भी आपको सही लिखता है आपको इसकी पूरी छूट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पाठ्येतर सक्रियता, पहला है आप गर्मी की चिलचिलाती धूप में कभी सफर करें तो दूर सड़क पर आपको पानी जैसा दिखाई देगा, पर पास पहुंचने पर वहां कुछ नहीं होता। अपने जीवन में भी कभी कभी हम सोचते कुछ है, दिखता कुछ है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। आपके जीवन में घटे ऐसे किसी अनुभव को अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखकर अभिव्यक्त कीजिए। तो यह आपका एक पत्र लेखन का प्रश्न है। ठीक है, किसी भी मित्र को आपको पत्र लिखकर यह बताना है कि आपके जीवन में क्या कभी कुछ ऐसी घटना हुई है जो आपको मृग मरीचिका का एहसास हुआ हो। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले अपना पता लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे प्रिय मित्र प्यार या स्नेह, और फिर शुरुआत करेंगे मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ या आशा करती हूँ तुम भी वहाँ ठीक होगे या ठीक होगी। आज मैंने तुम्हें ये पत्र इसीलिए लिखा है ताकि मैं तुमसे अपने कुछ अनुभव साझा कर सकूं। मित्र, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जीवन में हम जैसा सोचते हैं या देखते हैं असल में वैसा नहीं होता है, बात उससे बहुत ही भिन्न होती है। तो मैं अपने अनुभव साझा करके तुमसे भी ये पूछना चाहता हूँ या तुमसे भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें भी ऐसे अनुभव होते हैं, और अगर होते हैं तो तुम भी मुझे पत्र लिखकर अपने उन अनुभवों के बारे में जरूर बताओ। ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे और फिर कोई भी अनुभव साझा कर सकते हैं कि मुझे लगा था कि ऐसा होगा, मैं उस व्यक्ति से मिला, वो व्यक्ति ऐसा होगा, लेकिन असल में वो व्यक्ति ऐसा नहीं निकला, तो उस दिन से मुझे ये अनुभव हुआ कि ये सब मृग मरीचिका है, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी आप अपना अनुभव इसमें लिख सकते हैं और फिर धन्यवाद करते हुए अपना नाम लिखते हुए पत्र को समाप्त करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए प्रश्न, कवि गिरजा कुमार माथुर की 15 अगस्त कविता खोज कर पढ़िए और उस पर चर्चा कीजिए। ये जो कवि हैं माथुर जी, इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं जो कि हमारे आसपास के वातावरण और देश प्रकृति हर चीज को संबंधित है, हर चीज से। तो इन्हीं की कविता है 15 अगस्त जो हमारे देश से संबंधित है, आपको उसे ढूंढना है और उसे पढ़ना है। ये आपका असाइनमेंट हो गया। ठीक है, आप अपने शिक्षक से कह सकते हैं, घर में या किसी बड़े भाई बहन से मदद मांग सकते हैं या इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इस कविता को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, और आपस में मिलके जब कक्षा में आप वापस आएंगे पढ़ने के बाद, तो अपने दोस्तों से उसकी चर्चा कीजिए, है ना, सहपाठियों से जो क्लास में और बच्चे हैं उनसे चर्चा कीजिए, या जो शिक्षक हैं आपके उनसे चर्चा कीजिए कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा और आपको क्या समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रश्न उत्तर जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब आप अगले पेज पर आइए, पेज नंबर 48 पर। तो यहाँ पेज नंबर 48 पे शब्द संपदा है, यानी कि कुछ वोकैबुलरी, शब्द संपदा होती है वोकैबुलरी, यानी आपको कुछ कठिन शब्द जो कविता में आए होंगे जिनके अर्थ समझने में अगर मुश्किल हुई हो तो उसका सरल अर्थ आपको यहाँ पे बताया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कठिन शब्दों के सरल अर्थ। तो पहला है छाया, पूरी की पूरी कविता ही इस पर टिकी हुई है, पूरी क्योंकि इसका शीर्षक ही है छाया मत छूना, है ना। तो छाया किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, भ्रम या दुविधा, है ना, कोई भ्रम पैदा होता है, ये किससे होता है, अतीत से, बीते हुए समय से जो हमें भ्रम पैदा होता है ना, वहम होता है, उसी के लिए छाया वर्ड आया है। फिर है सुरंग, तो ये है रंग बिरंगी, क्योंकि है ना सुरंग सुधियां यानी रंग बिरंगी यादें। छवियों की चित्र गंध, यानी चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। अगर हम कोई चित्र देखते हैं, है ना, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति होता है या कोई जगह होती है तो हम उसे महसूस करने लगते हैं ना कि उस समय हम कैसा महसूस कर रहे थे, उस व्यक्ति में से कैसी गंध आ रही थी या आसपास अगर हम किसी बगीचे का चित्र है तो बगीचे में उस समय कैसी स्मेल आ रही थी, हम पहाड़ों पे घूमने गए हैं तो वहां कैसी सुगंध आ रही थी, नदियों के आसपास कैसी महक आ रही थी, ऐसे चित्र देख के हमें वो माहौल याद आने लगता है ना, हम वहां खुद को महसूस करने लगते हैं और आसपास के वातावरण की स्मेल हमें महसूस होने लगती है। तो वही इसका अर्थ हो गया कि छवियों की चित्रगंध। यामिनी, यामिनी का अर्थ होता है तारों भरी चांदनी रात, ठीक है, यामिनी यानी रात जो कि तारों भरी हो। कुंतल यानी लंबे केश, कुंतल के फूल कहा था यानी बालों में लगे हुए बेले के फूल। सरमाया यानी पूंजी, जो भी जन्म पूंजी रुपए पैसे हम इकट्ठे करते हैं उसके लिए शब्द आया है यहाँ पे सरमाया। फिर है प्रभुता का शरण बिंब यानी बड़प्पन का एहसास। प्रभुता यानी हो गया बड़प्पन और शरण बिंब यानी एहसास, ऐसा लगना कि हम अपने बड़प्पन का एहसास कर रहे हैं, उसके शरण में जा चुके हैं। और अगला है दुविधा हत साहस यानी ऐसा साहस, मतलब ऐसी दुविधा जो आपके साहस को भी हरा दे, ठीक है, ऐसी दुविधा जो आपके साहस को भी हरा दे, तो उसे हम कहेंगे दुविधा हत साहस यानी साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। आप में साहस तो है, हिम्मत तो है, लेकिन आपको दुविधा है, किसी चीज की मुश्किल हो रही है, कठिनाई हो रही है, जो आपको वो साहस करने से, वो हिम्मत करने से या कोई भी काम करने से, आगे बढ़ने से रोक रही है, ठीक है। तो दुविधा साहस यानी साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना। देखिए जल्दी जल्दी फिर से रिपीट कर दे रही हूँ एक बार। छाया यानी भ्रम या दुविधा, सुरंग यानी रंग बिरंगी, छवियों की चित्रगंध यानी चित्र की स्मृति या चित्र की याद के साथ उसकी आसपास की गंध या महक का अनुभव, यामिनी यानी तारों भरी चांदनी रात, कुंतल यानी लंबे केश, सरमाया यानी पूंजी, प्रभुता का शरण बिंब यानी बड़प्पन का एहसास, दुविधा हत साहस यानी साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। यहाँ आपके शब्दार्थ भी हो गए। अब आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है, यह भी जाने है ना, यह भी जाने में आपको कुछ, देखिए पाठ के अलावा जानकारी दी जाती है, तो क्या दी है आज, प्रसिद्ध गीत वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब शीर्षक से कवि गिरिजा कुमार माथुर ने किया है। तो आपने ये गीत सुना है वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, ओह डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे, ये है, ठीक है, असली गाना। और इसका जो अनुवाद किया है हिंदी में वो कवि गिरिजा कुमार माथुर, जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, इन्होंने ही किया है हिंदी में हमारे बच्चों के लिए। हम गाते हैं ना स्कूलों में भी अक्सर गाते हैं, क्या है इसका हिंदी अनुवाद वी शैल ओवरकम का, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये आपने, मुझे उम्मीद है ये गाना, ये गीत आपने सुना ही होगा। अगर ये गीत आपने नहीं सुना है तो इसको जरूर सुने, इसको गाएं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रेरणादायक गीत है, उत्साह से भरने वाला गीत है। तो असल में ये अंग्रेजी में लिखा गया था वी शैल ओवरकम, जिसका हिंदी में अनुवाद किया, इसको हिंदी में लिखा है गिरिजा कुमार माथुर जी ने, ठीक है। तो यहाँ आपका जो पाठ 7 की कविता थी छाया मत छूना, ये भी पूरी होती है। अब मिलेंगे अगले ऑडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।